हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम के 3 बजे, निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग। रोहान की स्पोर्ट्स कार उस बिल्डिंग के सामने आकर रुकी थी। रोहान ने कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त उसने फॉर्मल व्हाइट शर्ट और उसके नीचे ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसे उसने पैंट के अंदर टक कर रखा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। उसके बाल हल्के बिखरे थे और वो हाथ में चाबी घुमाते हुए ऑफिस के अंदर आया। वो इस वक्त काफी डैशिंग लग रहा था। एंटर होते ही जैसे वहाँ का मौसम भी बदल सा गया था। उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी और ना ही आज तक रोहान ने किसी की रोकटोक बर्दाश्त की है। रोहान खुद रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उससे अनाही के ऑफिस का एड्रेस पूछने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए उसे फ्लोर नंबर और सीईओ केबिन के बारे में बताया, जिसके सामने ही अनाही का केबिन था। रोहान ने हामी भरी और फिर बिना किसी पर ध्यान दिए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रोहान बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं हो रही है और वो श्योर है अपनी इस जॉब के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल का मासूम बच्चा घबराहट के मारे उछल रहा था। वो अपने उस भाई के ऑफिस में काम करने आया है, जिससे वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता है और जिसका ऑफर वो हजार बार रिफ्यूज कर चुका है। आज वो सामने से जाकर उससे रिक्वेस्ट करने वाला है अपनी जॉब के लिए। ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके होंठ बार बार सूख रहे थे, इसलिए वो अपने साथ लिप बाम लेकर आया था। उसने जैसे ही देखा कि लिफ्ट खाली है और उसके साथ कोई नहीं है, उसने लिप बाम निकाला और अपने सूखे होंठों पर लगाते हुए बोला, इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती होंगी अपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन में, जितने मुझे करने पड़ रहे हैं। उसने अपनी कनपटी से बहते पसीने को पोंछकर कहा, मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं रोहान निमानी हूँ। मुझे कोई भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता है। रोहान खुद को तसल्ली देते हुए आखिरकार केबिन में पहुँच चुका था। वो केबिन के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है तो सामने से अनाही की आवाज़ आती है, कम इन। रोहान एक लंबी सांस लेते हुए केबिन के अंदर जाता है। वही अनाही जिसने फिलहाल स्क्रीन रेडिएशन की वजह से चश्मा पहन रखा था। उसने अपना चश्मा उतारकर सामने देखा और रोहान को देखकर वो तुरंत ही अपनी चेयर से उठते हुए बोली, वेलकम, चलिए हम पहले वेदांत जी के केबिन में चलते हैं। उनसे पूछना होगा कि आपको वो कौन सी पोस्ट दे रहे हैं। रोहान ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, क्यों, आपने अभी तक पूछा नहीं? अनाही ने जल्दी से अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैंने पूछ लिया है, बट फिलहाल के लिए आपको काम कौन सा देना है ये मुझे नहीं पता है। इसका सारा मैनेजमेंट वैसे तो टीम देखती है, लेकिन आपके लिए मैंने वेदांत जी से बात की थी, तो हम उनके पास चलते हैं। अनाही ये बात काफी धीमी आवाज में बोल रही थी, ताकि कहीं से भी रोहान को ये ना लगे कि अनाही उसे ऑर्डर दे रही है, क्योंकि रोहान का बिहेवियर देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि रोहान को किसी के सामने रिक्वेस्ट करना पसंद नहीं है और उसे किसी का ऑर्डर लेना भी पसंद नहीं है। तो अनाही खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो रोहान को ऑर्डर ना देकर बस उसे सजेशन दे रही है और उसे कम समझाने की कोशिश कर रही है। रोहान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अनाही मुस्कुराकर अपने केबिन से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे रोहान भी निकल गया, लेकिन अब उसके कदम बेहद धीमे हो चुके थे और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो वो वेदांत से सामना कैसे करेगा और किस मुंह से उसे बोलेगा कि हाँ, मैं काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। अनाही ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से वेदांत ने कहा, कम इन, जिसके साथ ही अनाही मुस्कुराते हुए ऑफिस में एंटर हुई। वही वेदांत आंखें बड़ी किए अनाही के पीछे देख रहा था, जहां सर झुकाए रोहान खड़ा था। अनाही तेज कदमों से चलकर वेदांत की टेबल तक आई, जिसके पीछे पीछे रोहान भी अपने पैर घसीटते हुए आ ही चुका था। वेदांत ने घबराहट से सूखते अपने होंठों पर जीभ फेर कर कहा, बोलो, कोई काम था मुझे, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? कुछ पल की खामोशी के बाद अनाही ने रोहान की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, रोहान जी, आपसे बात कर रहे हैं, आप बोलिए कुछ। रोहान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें उठाकर एक बार वेदांत को देखा। उन दोनों में ये बहुत ही कम सिचुएशन होती थी जब वो एक दूसरे को गौर से देख रहे होते थे। रोहान ने एक नज़र अनाही को देखकर कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना मुझे कोई हेल्प चाहिए। मैडम जी ने जो बोला है वो करना चाहते हो तो बताओ, मैं यहाँ काम कर लूँगा, वरना अपना कहीं और कोई काम देख लूँगा। रोहान के दिल में जितनी घबराहट थी, चेहरे पर उससे 100 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर वेदांत ने गहरी सांस छोड़ी। उसे पता था उसका आपका भाई इतनी जल्दी हम्बल तो नहीं बन जाएगा एकदम से। वो पल भर में पत्थर से मोम नहीं बनेगा, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। वेदांत ने फिर टेबल के दराज से एक फाइल निकाली और उसमें अपने सिग्नेचर करते हुए वो फाइल रोहान को देते हुए कहा, तुम्हारा केबिन यहाँ से नीचे वाले फ्लोर पर है, मैं किसी को कॉल करता हूँ, आकर तुम्हें काम समझा देंगे, तुम जा सकते हो। रोहान तो जैसे ये सुनने की फिराक में ही था, उसने जैसे ही वेदांत का कहा सुना, वो तुरंत ही मुड़ते हुए तेज कदमों से ऑफिस से बाहर चला गया। उसे जाते देखकर वेदांत ने जल्दी से अपना फोन निकाल लिया, क्योंकि उसे पता था उसके भाई का पेशेंस लेवल कितना है। अगर उसे फ्लोर पर पहुंचते ही कोई नहीं मिला तो उसका जरा सा भी भरोसा नहीं है कि वो यहाँ रुकेगा, खुद तुरंत ही वापस घर चला जाएगा। वेदांत ने अपनी स्टाफ को कॉल करते हुए कहा, जूली, नीचे रोहान आया है, उसको काम समझाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं उसके साथ बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो सारे एम्प्लॉयज को समझा देना कि रोहान निमानी कौन है। जूली ने सामने से यस सर कहा और वेदांत ने कॉल कट करके एक चैन की सांस ली और फिर चेयर पर पीछे लीन होते हुए बोला, थैंक यू सो मच अनाही, अगर तुम नहीं होती तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने भाई से सामने से ऐसे आराम से बात कर पाता। वो मुझसे ऐसे नजरें कभी नहीं मिलाता और आज उसने जितनी शांति से बात की है वो सिर्फ सपनों में होता है। अनाही हैरान थी वेदांत की बातें सुनकर। हाँ, उसे पता था भाइयों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इतनी गहरी भी हो सकती है ये उसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसकी और विहा की लड़ाई तो 5 मिनट भी नहीं टिकती है। या तो विहा रोने लगती है या फिर अनाही खुद ही सामने से जाकर विहा को मना लेती है और इसी तरीके से उनकी लड़ाई तो अगले दिन में ठीक हो जाती है। अनाही वेदांत के सामने रख पर बैठते हुए बोली, पर इसका रीजन क्या है? वो क्यों आपसे इतने खफा खफा रहते हैं? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उनका मन इस तरीके से परिवार से उठ चुका है कि अब वापस लगने का नाम नहीं ले रहा है। फिर अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको पता है वो सामने से कई बार कोशिश करते हैं कि मुझसे बात करेंगे और हमारे बीच आई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, लेकिन फिर अचानक ही उनके दिमाग में ऐसा कुछ हिट करता है कि वो अपनी बात का पूरा मतलब ही बदल देते हैं। अगर वो मेरे लिए छोटा सा भी एफर्ट करते हैं तो उस एफर्ट को फिर एक कोइंसिडेंस बोल देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हाँ, मैं तुमसे आराम से बात करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं ये एफर्ट कर रहा था। और ये सब चीज बताती है कि उनके पास्ट में ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है जिस वजह से उनका मासूम सा दिल एकदम ही पत्थर बन गया है।
वेदांत ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम काफी समझदार हो, अगर इतना कुछ तुम्हें पता चल चुका है तो आगे भी चल जाएगा। बस इतना ही कहूंगा कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस नशे की लत ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। और लड़कियों को बस इसी चीज से प्रॉब्लम होती है कि उसका पति नशेड़ी है और लोगों के बीच उसकी बेइज्जती करवाता है। लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे अंदर इतनी समझदारी है कि तुम लोगों से पहले अपने पति का सोचोगी।